Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Amit Goyal.
नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरा।
थैंक यू अमित एंड विशाल, वेलकम टू द प्रोग्राम। A quick look at the headlines. India asks International Monetary Fund to reconsider its financial assistance to Pakistan. Benchmark domestic equity indices end two-day rising streak. Sensex slips 200 points. Nifty holds 25,000. And most Asian markets end mixed as investors assess Japan's downbeat GDP data. European indices trade higher.
आर्थिक सुर्खियों में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। घरेलू शेयर बाजार में दो दिन की तेजी पर विराम, सेंसेक्स में 200 अंक की गिरावट, हालांकि निफ्टी 25,000 के स्तर से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा। और जापान की जीडीपी में गिरावट से एशियाई बाजारों में मिला जुला दौर, यूरोपीय शेयर बाजारों में मजबूती का रुख।
In our headline story, India has asked the International Monetary Fund to reconsider its financial assistance to Pakistan. Defence Minister Rajnath Singh has said that a large portion of the funds will be directed towards supporting terror-related infrastructure within Pakistan. Addressing the air warriors at Air Force Station Bhuj this afternoon, he said, "In today's times, any form of economic assistance to Pakistan is no less than terror financing." Mr. Singh commended the Indian Air Force for its swift and decisive action during Operation Sindoor, stating that it made all Indians proud, both at home and abroad. Mr. Singh said that it took just 23 minutes for the Air Force to dismantle terrorist infrastructure being harbored in Pakistan. He emphasized that the operation sent a strong message against terrorism and showcased India's military strength and preparedness. Vishal, talking of strong messages, do you think that India needs to take this up more strongly, this message to the IMF and all other stakeholders of the IMF, that this is not done?
Well, yes, indeed, it is not done. And I must say that India has embarked on this journey of, you know, putting Pakistan in its place in terms of the facts of the case with respect to the terror emanating from across the border, something which we have been doing for a long time now. But the recent development of IMF, allocating approximately $1 billion, US dollars alone to Pakistan, definitely raises serious concerns about how that money is going to be used. Let's not forget the case of FATF as well. There have been several instances wherein the Financial Action Task Force, which looks into the fact that whether the loans which have been given to a particular country are put into a proper use, whether or not those that particular amount of money is utilized for purposes of financing terror activities or other illegal activities defined in the international charter. Pakistan has been found guilty not once but more than once, twice in fact. They've been put in grey list. They were on the verge of being put on the black list. So of course, amidst the situation wherein there's been this dastardly attack in Pahalgam on Indian citizens, and very much, very clearly established that this was supported by Pakistan's state actors also. So clearly, this is really, really important and significant question, which India is now asking to the international community, to IMF as well, that how will you ensure that this money does not land up, in terror financing activities as well?
So given the history and the background, why do you think this softening of the IMF's stance to say, okay, we'll give the money? I mean, all the facts are in front of them.
Well, I would say that, this is a softening of the stance. I would say this is an ongoing process, because when we're talking about the loans being granted by IMF or World Bank or ADB as well, they're not decided in one particular day. It's an ongoing process, and the decision is being taken by an executive, committee, which includes approximately 24 countries. And India had expressed its displeasure by, abstaining from the vote. Now, the reason why India abstained from the vote is because there is no provision of a negative vote in IMF. So India expressed its displeasure and its negation of the IMF's decision to go ahead and give the loan in the first instance itself. But now that the loan has been given, we are very much in our rightful place to raise questions, to raise objections, not only because we are the victim of terror emanating from the Pakistani soil, but also because of the fact that India is a significant contributor to IMF, to the International Monetary Fund. We became a member in 1945 when we are the original member, founding member of the IMF. Right. In 2000, if you look at, go back a little in the history and do a comparative analysis, we're way ahead of Pakistan. In 2000, we repaid all our loans and we became a contributor. In 2011, our contribution was to the tune of more than 5,000 crore rupees. So as a contributor, it is our right to know as well that the money which we are contributing is being given on loan to X or Y or Z country. Where is it going to be spent? Is it going to be spent in illegal activities like terror financing? And if so, it is going to directly impact us, because we are facing this terror onslaught from across the border, from a country which is now getting money from IMF, to which we are contributors.
Right.
विशाल, बहुत संक्षेप में हमारे श्रोताओं के लिए, इस तरीके की अगर किसी भी सहायता पे कोई भी सदस्य देश अगर आपत्ति जताता है तो उसका कितना असर होता है और इस प्रोसेस को कितना रोका जा सकता है या इसको देर किया जा सकता है?
देखिए, लोन क्योंकि सैंक्शन हो चुका है पाकिस्तान को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो $1 बिलियन है वो उनको जिस दिन मंजूरी मिली उसके अगले ही दिन उनको मिलेंगे. इस तरह के लोन ट्रेंचेज में दिए जाते हैं, किश्तों में दिए जाते हैं, और उनके साथ कुछ कंडीशंस भी होती हैं जिनको, जिस देश को लोन दिया जाता है उसका पालन उनको करना जरूरी होता है, कि आपने अगर एक्स कैटेगरी में ए प्रोजेक्ट के लिए पैसा मांगा है तो आपको उसकी प्रोग्रेस दिखानी होगी कि कितना काम हुआ है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे किया गया है. भारत इस समय यह कह रहा है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बाकी देश हैं, उनको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये जो नियम कानून है उस पैसे के खर्चे के लिए उनको और सख्ताई से और कड़ाई से लागू किया जाए, यह तय करने के लिए कि ऐसा जो दिया गया है इसका गलत इस्तेमाल ना हो. इसका इस्तेमाल जो पाकिस्तान की आम जनता या आवाम है, अगर उनकी बेहतरी के लिए किया जा रहा तो वो बात अलग है, लेकिन जो टेरर फाइनेंसिंग है, जो आतंकवादी संगठनों को जो मदद मुहैया कराई जाती है, पाकिस्तान की जो स्टेट अपैरेटस है, जो पाकिस्तानी आर्मी है, ISI है, वो वहां उस पैसे का इस्तेमाल ना किया जा सके.
जी.
In a related story again of the world taking cognizance of funding over there, over 125 top leading trade leaders from across the country have decided to boycott all forms of trade and commercial engagement with Turkey and Azerbaijan, including travel and tourism. The decision was taken at a national conference of trade leaders convened by the Confederation of All India Traders, CAIT, in New Delhi today. In a statement, CAIT said the resolution comes in response to the recent stand taken by Turkey and Azerbaijan to extend full support to Pakistan at a time when India is facing a sensitive and critical national security situation. It said the Indian trading community views this as a betrayal, particularly considering the humanitarian and diplomatic support extended to both countries in the past by India during the crisis. Do you think this boycott is actually going to have an impact on those countries?
Indeed, it is going to have an impact, because you look at the kind of trade between India and Turkey. That's one part of it. But you look at the tourism part specifically, and it's not just about the trade bodies. There isn't a sentiment, you know. There are expressions being put out by the general public, by concerned citizens, by people who themselves are pointing out that, you know, let's go ahead and skip Turkey as a tourist destination. So that's the softer part of it. That's the another part of it. But look at what the government has also done. You know, Indian government has also done. A Turkish firm which was involved in ground operations on the Indira Gandhi International Airport in Delhi, its security clearance has been revoked by the government. That's one. Two, it's sending a strong message. By sending a strong message, the Turkish ambassador was supposed to present his credentials. That has been delayed. So it's basically a diplomatic way of Indian government pointing out, you know, to its counterparts in Turkey that these things cannot go hand in gloves. You know, on one side we talk trade, on one side we talk friendship, and on the other end, you cannot go ahead and keep on supporting those countries or those people, those elements who ultimately are propagating or supporting the terror infra and you know, the terrorists who end up attacking our innocent civilians, our citizens.
True.
Bharat ab is baat pe zyada mukhar ho chuka hai ki agar aapko Bharat ke sath vyapar karna hai ya Bharat ke sabhi aarthik ke sath sath unko Bharat ki janata ke hiton ka bhi dhyan rakhna hoga aur ye sandesh pahunchane mein Bharat sarkar ab zyada mukhar hai. Kya kahenge is bare mein?
Ji bilkul. Aur dekhiye, Operation Sindoor ke sath hi ek naya aayam Bharat ke nazariye ki baat kare, diplomatic policy की बात करें, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की बात करें, उसमें एक नया आयाम पेश किया गया है और वो आयाम बहुत साफ है कि हम एक लेवल तक, एक लिमिट तक किसी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं. और खासतौर तक अगर आतंकवाद की बात करें तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस है. और वो जीरो टॉलरेंस केवल आतंकवादी गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगा, उससे संबंधित जो बाकी काम भी हैं उनसे भी जुड़ा हुआ रहेगा. जैसे कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो हैंड इन हैंड, टेरर एंड वाटर कैनॉट गो हैंड इन हैंड.
जी चलिए नफे डालते हैं शेयर बाजार पर. दो दिन की तेजी के बाद घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट दर्ज हुई. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% के नुकसान से 200 अंक गिरकर 82,321 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 42 अंक गिरकर 25,020 के स्तर पर बंद हुआ. हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.8% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.1% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा.
Benchmark domestic equity indices today ended with modest losses, snapping their two-day rising streak, dragged by the IT sector and mixed global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, slipped 200 points or 0.24% to close at 82,331. The National Stock Exchange Nifty 50 dipped 42 points or 0.17% to settle at 25,020. The broader market indices at the BSE outperformed the benchmark indices. The mid-cap index gained over 0.8% and the small-cap index climbed over 1.1%. In the Sensex pack, 17 out of 30 companies edged up. Among the top gainers, Eternal advanced almost 1.4%, Hindustan Unilever rose 1.1% and Asian Paints increased almost 1%. On the downside, Bharti Airtel dipped 2.8%, HCL Tech dropped over 2.1%, and SBI Bank slipped over 1.9%. In sectoral indices at the BSE, 14 out of 21 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, industrials jumped 1.8%, realty advanced over 1.7%, and capital goods gained more than 1.6%. In the top laggards, tech fell almost 1.3%. Focused IT lost over 0.8% and IT slid 0.7%. Meanwhile, the overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,607 companies advanced, 1,380 declined, and shares of 139 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 57 companies hit their 52-week high, while 8 companies hit their 52-week low.
अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 3 पैसे की मजबूती से 85.52 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर रहा. डॉलर इंडेक्स 100.7 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. विशाल, अगर शेयर बाजार की दशा पे देखें, दो दिन की तेजी थी, आज हल्की सी गिरावट है, किस तरह से आंकेंगे? हालांकि अगर हम इसकी डिटेल्स देखें तो जैसा कि गौरा ने बताया, बीएसई के 21 क्षेत्रों में से 14 क्षेत्रों में आज भी बढ़त रही है. क्या माना जाए, बाजार पे निवेशकों का भरोसा बिल्कुल बरकरार है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली भी समय के साथ की जा रही है।
मैं इस आकलन को मैं थोड़ा सा ब्रॉडर कर देता हूँ, केवल दो दिन की बात ना करें, आज की केवल बात ना करें, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और मार्केट अब सोमवार को ही खुलेगी। तो मोटे तौर पे अगर हम पूरे हफ्ते पे नजर डालें तो आप देखिए कि NSE निफ्टी 50 और BSE 30 दोनों में जो ओवरऑल गेन रहा है पूरे हफ्ते में वो लगभग 4% के आसपास रहा है
जी।
अब हम सेक्टोरल इंडाइसेस की तरफ नजर डालते हैं तो मैं मोटे तौर पे अभी एक डेटा को देख रहा था, एक भी सेक्टोरल इंडाइस ऐसा नहीं है जो के जिसमें नुकसान हुआ जो रेड में, सभी सेक्टोरल इंडाइसेस ग्रीन में है
साप्ताहिक तौर पे
इस पूरे हफ्ते के
जी,
लिए
जी।
और एवरेज अगर उनके निकाल के देखी जाए तो लगभग 5% के आसपास सेक्टोरल इंडाइसेस में गेन है। कोई आज अगर आईटी पीछे है और रिटेल थोड़ा सा पीछे रह गया है, तो दो दिन पहले आईटी आगे था, रिटेल आगे था। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, और उसमें डिफेंस सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सीधा असर जो है मैं ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ के देखता हूं, क्योंकि उस दौरान जो स्वदेशी हथियारों का जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसके चलते ना केवल भारतीय सेना का जो है उसमें विश्वास बढ़ा है, बल्कि निवेशकों का, खरीदारों का विश्वास बढ़ा है, और उसका सीधा असर बाजार पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब वैश्विक तौर पर जो भारत की जो डिफेंस कंपनियां हैं उनको बड़े ही सम्मान के साथ अब और सम्मान के साथ देखा जा रहा है। इससे पहले भी हम ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल को बेच रहे थे, लेकिन अब उनकी डिमांड और अचानक से उसकी डिमांड में बढ़ोतरी आई है, तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू इसमें यह है कि अगर आप मोटे तौर पर बाजार पर नजर डालें तो कई इंडिकेटर्स हैं, ग्लोबल इंडिकेटर्स की बात करें तो जिस तरह से आज से एक महीने भर पहले एक बड़ा कन्फ्यूजन था ट्रेड डील्स को लेकर, खासतौर पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो राष्ट्रपति ट्रंप ने जिसकी घोषणा की थी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो अमेरिका चीन की डील हुई, अमेरिका और यूके की जो डील हुई है, और उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच भी जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत है वो बड़ी सकारात्मक चल रही है, तो इन सब के चलते एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट्स में कि ये जो एक झटका लगा था रेसिप्रोकल ट्रेड का उससे शायद अब हम धीरे धीरे उभर के बाहर आ रहे हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि वो डेटा सेट्स जिन पे सबकी नजर रहती है, भारत का महंगाई का आंकड़ा हो या फिर वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी ग्रोथ का आंकड़ा हो, यूके की जो ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है उसमें जबरदस्त ग्रोथ हुई है, उछाल आया है
जी।
अभी तक 0.1% के आसपास ग्रोथ चल रही थी, अब 0.7% है, जो कि बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। भारत में अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो आंकड़े लगभग 3.2% के आसपास हैं, जो कि लगातार तीसरे महीने जो है 4% से कम है, 4 से 6 की वो ब्रैकेट जो कि आरबीआई जिसको चाहता है। अगर इन्फ्लेशन पे काबू हम किए हुए हैं तो अब उम्मीद ये है कि एक मतलब
जो कुछ होगा अच्छा ही होगा
जी, अच्छा होगा। और आरबीआई की तरफ से रेट कट की घोषणा होगी, मैं तो कई एनालिस्ट मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के आकलन भी पढ़ रहा था, अब उम्मीदें आज से 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आता था तो उम्मीदें थी कि शायद 25 बेसिस पॉइंट घट जाएगा या शायद हम उसको बराबर ही रखेंगे। अब उम्मीदें 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट तक आ रही है, कि आकलन आ रहा है, उम्मीद की जा रही है कि अगले मॉनेटरी पॉलिसी में शायद इस तरह का फैसला देखने को मिले। तो ये सब पॉजिटिव संकेत हैं जिसका सीधा असर मार्केट पे देखने को मिलता है। और हाँ, ये जरूर है कि आज अगर 200 पॉइंट नीचे गया है तो वो सवाल अगर कोई पूछना चाहे, भाई अब मार्केट है, बाजार है, जब ऊपर जाएगा तो उसमें कुछ बिकवाली होगी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा
जी। चलिए नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुझान रहा। जापान की जीडीपी और क्षेत्र की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर निवेशकों की सतर्क निगाह रही। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जापान की अर्थव्यवस्था में पहली बार मार्च तिमाही में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। वार्षिक आधार पर जीडीपी में पहली तिमाही में 0.7% की कमी रही। इसके कारण जापान के शेयर बाजार निकेई लगभग पूर्व स्तर बना रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.2% और सिंगापुर के स्टेट टाइम सूचकांक में भी 0.2% की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग और चीन के शंघाई का अपर सूचकांक में 0.4% की गिरावट रही। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.4% से 0.6% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। इस बीच ब्रिटेन के आर्थिक आंकड़ों में पहली तिमाही में जीडीपी में 0.7% की तेज बढ़त दर्ज हुई। पिछले एक वर्ष में ब्रिटेन में जीडीपी में यह सर्वाधिक तिमाही बढ़त है। नफर डालते हैं अमरीकी शेयर बाजार के।
US stocks ended mixed on Thursday. The Dow Jones Industrial Average gained over 0.6%. S&P 500 added 0.4%, while Nasdaq Composite dropped almost 0.2%. On the economic front, US producer inflation fell in April. According to the Labor Department's Bureau of Labor Statistics, the producer price index for final demand dropped 0.5% in April. On an annual basis, producer prices rose 2.4% last month, decelerating from a 3.4% year-over-year gain in March. Services prices fell 0.7%, the biggest drop since the index began in December 2009. Vishal, when we take a look at international markets today and, of course, over the past week and some time, the sword of tariffs which was hanging over the heads of different markets over the past few weeks, do you think it's fallen or has it been held in abeyance? Have the markets taken that into account already now?
I would say held in abeyance because, you know, there are still several countries which are yet to figure a way out as far as, you know, the reciprocal tariff onslaught which came in from the United States. UK has, you know, wiggled itself out of it by having a deal with the United States.
Right.
China has also managed to do so, at least for 90 days. You know, that's what the agreement is between both the countries. Now, this seemingly has a positive impact on the overall market scenario. But then there are every market, every, you know, economy has their own domestic factors as well as you were informing the listeners a little while ago that Japanese economy seemingly has shrunk. So, of course, that has an impact on the Japanese stock market out there. Then you look at the U.S. Producer price data as well. That seemingly is not expected, as favorable as perhaps those those sitting in the United States economic policies circles would have wanted. So those are the issues which will keep on impacting the specific markets. But overall, if you look at that it's going to be a mixed response. You know, we will. Mm-hmm. It would look like that at one point in time, the Asian markets will do really well. The European markets will underperform. Then perhaps, you know, the Asian markets will pick up or rather underperform and the European markets will pick up. As far as S&P and, you know, Dow Jones is concerned, I would say it is more or less going to be, swayed by the domestic data on labor, on unemployment, on inflation, in addition to what President Trump does in his, I wouldn't say the trade onslaught, but now it's diplomacy and trade mixed as far as President Trump is concerned. He's been to Middle East, struck some very good deals. So will that have an impact? We'll have to wait and watch because there is a lot of commitment from countries like Saudi Arabia and UAE to invest in United States of America. Then, whether or not those reciprocal tariff fallouts, will United States of America be able to stay on the path where it consolidates the gain, which it believed that it would have within the first 3 months or the first quarter of those discussions, those decisions being taken. So it's going to be a sort of a mixed path from here onwards. That is why I chose the word abeyance rather than a final
path. Right.
चलिए वैश्विक बाजारों पर नजर डालते हैं घरेलू कुछ अर्थव्यवस्था की खबरों पे। अप्रैल माह के दौरान देश का वस्तु एवं सेवा क्षेत्र का कुल निर्यात 12.7% बढ़कर 73 अरब 80 करोड़ डॉलर पहुंच गया। पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान यह निर्यात 65 अरब 48 करोड़ डॉलर का था। अमरीका द्वारा व्यापारिक शुल्क में बढ़ोतरी और वैश्विक आर्थिक अनियमितताओं के बावजूद निर्यात में वृद्धि दर्ज हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के दौरान वस्तु निर्यात 9% बढ़कर 38 अरब 49 करोड़ डॉलर हो गया। निर्यात में उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग उपकरणों में सर्वाधिक बढ़त दर्ज हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 39.5% बढ़कर 3 अरब 70 करोड़ डॉलर का रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 2 अरब 65 करोड़ डॉलर का था। इस दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में 11.3% और रत्न एवं आभूषण निर्यात में 10.7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मार्च 2025 के दौरान भारत का व्यापार घाटा 21 अरब 54 करोड़ डॉलर से बढ़कर 26 अरब 42 करोड़ डॉलर पहुंच गया। अप्रैल के दौरान भारत का वस्तु एवं सेवा क्षेत्र के आयात में 15.7% की बढ़ोतरी भी होने की संभावना है। हालांकि मासिक आंकड़े हैं, फिर भी किस तरह देखते हैं? अच्छी खबरों की शुरुआत तो यहां से भी है ही।
जी बिल्कुल, देखिए चाहे बेशक से आप इन्हें मासिक आंकड़े कहिए, लेकिन मोटे तौर पर अगर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में इतने जो है मतलब बेहतरीन आंकड़े देखने को मिल रहे हैं
जी,
तो ये एक इंडिकेशन है कि फंडामेंटल
शुरुआत अच्छी है, तो
शुरुआत अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और एक अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन।
India's foreign exchange reserves rose by $4.55 billion, reaching $690.6 billion in the week ending 9th May, according to the weekly statistical supplement released by the Reserve Bank of India during the last week. Foreign currency assets, a major component of the reserves, were up by $196 million to over $581.3 billion. Gold reserves surged by $4.5 billion, totaling to $86.33 billion. Meanwhile, special drawing rights were down by $26 million, reaching over $18.53 billion. And central bank's position on the International Monetary Fund was also down by $134 million, reaching $4.37 billion.
बहुत संक्षेप में, अगर भारत का इस स्थिति में, क्योंकि 9 मई के आंकड़े हैं, अगर उस सप्ताह भी भारत की आर्थिक स्थिति, अगर हम रिजर्व के बारे में बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करें, वहां से अगर अच्छे संकेत आते हैं, तो क्या माने कि हमारी सारी तरफ से अच्छी खबरों की शुरुआत जारी रहेगी?
जी बिल्कुल जारी रहेगी, और फॉरेक्स रिजर्व के मामले में तो हमें कभी किसी दिक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ा
जी।
In another story, the total number of Aadhaar authentication transactions have crossed 150 billion marks, making it a milestone moment in the journey of the Unique Identification Authority of India for the broader Aadhaar ecosystem. The landmark highlights the extensive usage of utility of Aadhaar and the growing of digital economy in the country. Crude oil prices, well, oil prices edged up today amid easing US and China trade tension, but gains were capped due to higher supply expectations from Iran and OPEC Plus. Brent crude was trading over 0.3%, up at $64.77 per barrel. WTI crude was also trading over 0.3%, up at $61.83 per barrel when reports last came.
बहुत संक्षेप में, अगर कच्चे तेल की कीमतों में 3% की कमी थी कल और परसों की अगर हम बात करते हैं, आज तकरीबन वो स्तर बनाया हुआ है, और कच्चे तेल की कीमतों में अगर कमी आती है तो देश के लिए तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छी खबर ही कही जाएगी।
जी बिल्कुल, हमारे लिए अच्छी खबर है, और ये बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि मिडिल ईस्ट में जो डिप्लोमेसी चल रही है, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, उनको कैसे वहां के जो नेता हैं वो, और जो वर्ल्ड पावर्स हैं, उनको कैसे डेलिकेटली डील करते हैं, तो उस पर निर्भर रहेगा। लेकिन अगर हमें कुछ खरीदना है और उसकी कीमत कम है, तो हमारे लिए
बेहतर है। चलिए नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट रही। सोना 1% से अधिक की गिरावट से 92,620 रुपए प्रति दस ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 1.2% की मंदी से 94,860 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार में सोना लगभग 1% की मंदी से 92,191 रुपए प्रति दस ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 1.4% की गिरावट से 94,576 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। हालांकि समय की बाध्यता है, फिर भी सोने और चांदी ने जो रेस लगाई थी और जो तेजी के दौर में सवार थे, अब क्या लगता है, नरमी बनी रहेगी या वैश्विक परिदृश्य में अभी भी सोने और चांदी की चमक बरकरार है और 1,00,000 के आंकड़ों को जल्द ही वापस देखने को मिलेगा?
देखिए, मेरा मानना है कि चमक बरकरार रहेगी, खासतौर पे सोने की चमक तो जरूर बरकरार रहेगी, क्योंकि सोना हमेशा एक हेज इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। केवल आप और मैं या हमारे जैसे और लोग सोने के जेवर नहीं खरीदते, बल्कि सरकारें भी हेज इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उसको यूज करती हैं, तो उसका सीधा असर तो पड़ना है और जरूर चमक बरकरार रहने।
लेकिन भारतीय बाजारों में अभी एक शंकाएं ये भी थी कि अब सोने और चांदी में चांदी शायद ज्यादा सा तेजी से दौड़ लगाएगी 1,00,000 की तरफ, एक विशेषज्ञ के तौर पे आपका क्या आकलन है?
देखिए, छोटा सा जवाब इसका ये रहेगा कि चांदी तो शॉर्ट टर्म में जरूर आगे निकल सकती है, लेकिन सोना जो है लॉन्ग टर्म लंबी रेस का घोड़ा है इस मसले में, और क्योंकि समय आपके पास कम है, लेकिन सोने चांदी पे अगर चाहें तो हम अलग से एक विस्तृत चर्चा कर सकते हैं।
सो दैट मींस अ क्विक वी कैन लुक एट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, गोल्ड कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट टू।
इंडीड,
राइट
भारतीय महिलाओं का वैसे भी सोने के प्रति ललक जो है जग जाहिर है.
मेरा कहना है कि महिलाएं नहीं, आजकल तो पुरुषों के भी ललक.
एब्सोल्युटली.
और भारत सरकार के साथ साथ सभी जो केंद्रीय बैंक है सभी देशों के, उन्होंने भी सोने के प्रति चमक बरकरार रखी है. चलिए विशाल, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद.
धन्यवाद.
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
एब्सोल्युटली विशाल, थैंक यू वेरी मच. अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस. इंडिया आस्क्स इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड टू रिकंसिडर its financial assistance to Pakistan. Benchmark domestic equity indices end two-day rising streak. Sensex slips 200 points. Nifty holds 25,000. And most Asian markets end mixed as investors assess Japan's downbeat GDP data. European indices trade higher. And that's all for today. Namaskar. Market Hunter.